सबके चेहरों पर एक मुस्कान आ गई थी। बृजेश जी और आशा जी को आज वापस जाना था। बृजेश जी तो फिर भी आते जाते रहते थे, लेकिन आशा जी तो काफी समय से यहाँ पर थी, इसीलिए अब वो भी वापस जाने की बात कर रही थी, जिसे सुनकर अरुणिमा का मन उदास हो गया था। वे सब मंदिर से निकलकर घर जाने ही वाले थे, क्योंकि नामकरण की पूजा हो चुकी थी। पर तभी एकदम से अरुणिमा का फोन बजने लगा। जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गई। सेंट्रल जेल से फोन था। आर्यन इस वक्त आभा की गोद में था और उसकी बेटी के साथ खेल रहा था। अरुणिमा ने जब फोन रिसीव किया तो वो एकदम से हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हैरानी से आशा जी और बृजेश जी की तरफ देखा। आशा जी ने जब अरुणिमा की आंखों में आंसू देखे तो वो परेशान हो गई। आस्तिक ने तुरंत अरुणिमा को संभालते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अरुणिमा के होंठ कांप रहे थे और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आरुषि। कुछ ही देर में सारा परिवार हॉस्पिटल के वार्ड में मौजूद था। आशा जी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और बृजेश जी भी बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। आस्तिक के चेहरे पर भी एक निराशा की लकीर थी और अरुणिमा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। सामने आरुषि बेजान सी पड़ी थी, बस उसकी सांसें ही बाकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था और हाथ में हल चलने की ताकत नहीं रह गई थी। डॉक्टर ने निराशा के साथ कहा, पेशेंट के पास ज्यादा समय नहीं है, आपको जो बात करनी है अब जल्दी कीजिए। और हाँ, पेशेंट बात करने की हालत में नहीं है, इसलिए इन्हें ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। डॉक्टर वहां से चले गए। अरुणिमा निराश हो गई और रोते हुए आरुषि के पास आई। वो आरुषि का हाथ थामते हुए बोली, आरुषि तुम ऐसी क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था ना अपना इलाज करवाने के लिए, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी सारी दवाइयां टाइम पर लेना और सारे टेस्ट करवाना, तो फिर तुमने ऐसी जिद क्यों की? तुमने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? आशा जी आरुषि के पास आईं और उसके सिर को सहलाते हुए बोली, आरुषि बेटा, हमने कभी तुम्हें खुद से पराया नहीं माना था। तुम हमेशा हमारी बेटी रही हो, हमारे लिए हमारी अरुणिमा जैसी ही थी। हम चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ, तो फिर तुमने खुद का इलाज क्यों नहीं कराया? कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे रहा था, तुम्हें खुद को सजा देने की जरूरत नहीं थी। आरुषि ने धीरे से अपने होठों को खोला और हवा के साथ कुछ शब्द बोलने की कोशिश की। अरुणिमा ने धीरे से आरुषि के चेहरे के पास अपने कान ले जाकर उसके शब्दों को सुनने की कोशिश की। उसने बहुत धीमी और कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये दर्द, ये तकलीफ मुझे जीने नहीं देती। मुझे मरना है, पर मुझे सुकून से मौत तभी मिलेगी जब मुझे तुम्हारी माफी मिलेगी। उसके शब्दों को सुनकर अरुणिमा और ज्यादा टूट गई। वो लगभग गिरने को हो रही थी जब आस्तिक ने उसे संभाल लिया। आस्तिक के चेहरे पर इस वक्त कोई नफरत नहीं थी। जो दुनिया छोड़कर जा रहा है उसे क्या ही नफरत निभाई जाए। अरुणिमा ने रोते हुए आस्तिक को देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। आस्तिक ने आंखें बंद की और सिर हिलाया। उसने सांत्वना देने वाले शब्दों में कहा, हमने तुम्हें माफ किया आरुषि, हमने तुम्हें हमारे बच्चे के कत्ल से माफ किया। अरुणिमा ने रोते हुए आरुषि की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया आरुषि। आरुषि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे दुनिया भर का सुकून मिल गया हो। उसने हाथों की उंगलियां हिलाकर कुछ पूछना चाहा। आरुषि के इशारे को अरुणिमा ने समझ लिया। उसने तुरंत कहा, बच्चा ठीक है, आर्यन नाम है उसका। आरुषि की आंखें सुकून से बंद हो गई और वो गहरी सांस लेते हुए हल्की सी मुस्कुराने लगी। इसी के साथ आरुषि का मॉनिटर स्क्रीन बंद हो गया और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। आशा जी, बृजेश जी और अरुणिमा जब ये देखते हैं तो उनका दर्द एकदम से छलक पड़ता है। वे आरुषि के लिए बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। आरुषि ने गलत किया था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से नहीं। उसे सजा कानून देता, पर जो सजा आरुषि ने खुद के लिए चुनी थी उसने उसी को ही सही माना। उसके लिए ये जिंदगी बहुत भारी लगने लगी थी। सारी जिंदगी अपने परिवार से और अपनी बहन से नफरत करने के बाद जब आरुषि ने खुद को देखा तो वो अकेली थी, उसके पास कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि अंत समय पर भी उसने खुद के लिए एकांत ही चुना था। और जब वो बीमार पड़ी तो उसने किसी को सूचना नहीं दी, बल्कि खुद ही अपनी बीमारी और कैंसर की तकलीफ को अंदर ही अंदर सहती रही, क्योंकि ये जिंदगी अब उसे चाहिए ही नहीं थी। उसने जिंदगी को नर्क बना दिया था, इसीलिए उसे मौत बेहतर लग रही थी। आखिरकार उसने वो हासिल कर ही लिया जो उसे चाहिए था, आस्तिक और अरुणिमा की माफी, और इसी के साथ वो सुकून से इस दुनिया से विदा हो गई। आशा जी और बृजेश जी की एक बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी और उन्हें इसका गहरा दुख था। अरुणिमा ने अपनी बहन को खो दिया था और ये उसके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। कुछ दिनों बाद आशा जी और बृजेश जी बैंगलोर वापस चले गए। अरुणिमा अपने परिवार में व्यस्त हो गई। सबकी दुनिया सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन आरुषि के चले जाने का दुख सबके दिलों के कोने में खालीपन की तरह बसा हुआ था। आस्तिक और अरुणिमा के प्यार में आर्यन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अपने माता पिता के बीच इतना प्यार देखकर वही सीख रहा था। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है, जो वो महसूस करता है और जो उसे सिखाया जाता है। अगर आर्यन ने आस्तिक और अरुणिमा को तब देखा होता जब आस्तिक बीस्ट था तो शायद वो भी वैसा ही बनता, लेकिन आज उन दोनों को देखकर आर्यन वही सीख रहा है जो हर माता पिता अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। देव और आस्तिक ने अपना वादा पूरा किया। बस कुछ ही सालों में पुष्कर रायचंद की बनाई हुई काली दुनिया का साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसे बर्बाद करने में देव का ही हाथ था और आस्तिक ने उसकी मदद की थी। अपने साम्राज्य को अपने सामने बर्बाद होते देख पुष्कर रायचंद बौखला गया और धीरे धीरे वो पागल हो गया। नेहा रायचंद को अपनी गलती का एहसास था। पावर की चाह में उसने आस्तिक का इस्तेमाल किया और वो एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई। अब उसके पास कुछ नहीं था, खालीपन और अकेलापन। आर्यन इस वक्त गार्डन में खेल रहा था और अरुणिमा उसे देख रही थी। आस्तिक अरुणिमा के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, क्या सोच रही हो? अरुणिमा ने धीमी आवाज में कहा, सोच रही हूँ उस दिन को जब हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी थी। तब हम दोनों इस किस्मत को चाहते भी नहीं थे और ना ही एक दूसरे का साथ, लेकिन आज सब कुछ कितना अलग लगता है ना। अगर उस दिन को याद करती हूँ तो आज भी हैरान हो जाती हूँ कि जिस इंसान से मैं नफरत करती थी और जिसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती थी, आज उससे मुझे इतना प्यार हो गया है कि उसके बिना रहना मैं सोच भी नहीं सकती। आज हमारा ये परिवार है, तुम्हारा प्यार है। इतनी सारी खुशियों के बीच मुझे डर लगता है कहीं मेरी खुशियों को फिर से किसी की नजर न लग जाए। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया और अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, हमारे इस प्यार और परिवार को कोई नजर नहीं लग सकती, क्योंकि हम दोनों ने अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं देकर यहाँ तक पहुंचे हैं। किसी भी रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमारा पहला रिश्ता टूटा क्योंकि तब ना हमारे रिश्ते में प्यार था ना विश्वास, लेकिन आज हमारे रिश्ते में प्यार भी है और विश्वास भी। इसीलिए तुम्हारा मुझसे अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों में भी नहीं, क्योंकि अगले 7 जन्मों के लिए मेरे अंदर के बीस्ट को तुमने काबू में रखा है। अरुणिमा ये सुनकर मुस्कुराने लगी। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के होठों के पास आया, लेकिन इससे पहले कि वो उसके होठों को छू पाता, गुस्से में आर्यन चिल्लाते हुए कहा, डैडी।
आस्तिक एकदम हड़बड़ाकर अरुणिमा से अलग हो गया और अरुणिमा हंसने लगी। आस्तिक ने धीरे से अरुणिमा के कानों में कहा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती सिवाय हमारे बेटे की। मुझे तो लगता है मेरा कॉम्पिटिशन मेरे बच्चे से ही है कि कौन उसकी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करता है। 5 साल का आर्यन गुस्से में आस्तिक की तरफ बढ़ रहा था और आस्तिक उसे अपनी तरफ आता देख घबरा गया। वो अरुणिमा के पीछे छुप गया। आर्यन ने गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहा, आप मेरी मम्मी को किस कर रहे थे ना? अरुणिमा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी, लेकिन आस्तिक ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को किस नहीं कर रहा था, बल्कि उनके गालों पर कुछ लगा हुआ था, बस उसे साफ कर रहा था। झूठ मत बोलिए, साफ करने के लिए हाथों की जरूरत होती है, होठों की नहीं। आप मम्मी को किस कर रहे थे और अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। आस्तिक एकदम से सामने आया और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, अपने बाप को पनिश करने की बात कर रहा है? पर तभी एकदम से अरुणिमा ने आस्तिक को कंधे पर धक्का देकर दूर करते हुए कहा, खबरदार जो मेरे बेटे को अपनी बड़ी बड़ी शेर जैसी आंखें दिखाई। तो आस्तिक एकदम से बोल पड़ा, अरुणिमा तुम्हें मेरी साइड होना चाहिए था, तुम क्या अपने बेटे की साइड ले रही हो? कमाल है यार, तुम दोनों एक साइड हो जाओ, मैं अकेला खड़ा हूँ। अरुणिमा ने इधर उधर देखा और तभी उसे एक शरारत सूझी। उसने आर्यन से कहा, बेटा तुम्हारे पापा को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उन्हें पनिश हम दोनों मिलकर करेंगे। आज इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा तुम्हारी मम्मी को किस करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आर्यन के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। अरुणिमा ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा पीछे ले गई और तभी दोनों झुककर गार्डन में लगा हुआ पानी का पाइप उठा लेते हैं। आस्तिक एकदम से हैरान हो गया और अगले ही पल आर्यन और अरुणिमा ने पानी सीधे आस्तिक के ऊपर छोड़ दिया। आस्तिक पाइप से निकल रहे पानी के शावर से पूरी तरह भीग गया था और उसे ऐसा देखकर आर्यन जोर जोर से ताली बजाते हुए हंसने लगा। आस्तिक और अरुणिमा के प्यार का सफर यहीं समाप्त होता है। उनकी हैप्पी फैमिली हमेशा खुश रहे, हम यही आशा करते हैं। और आपका भी धन्यवाद कि आपने इस सफर को पढ़कर पसंद किया और इसके अंत तक हमारे साथ बने रहे। जानती हूँ कुछ लोगों को इस कहानी के अंत से बहुत ज्यादा निराशा होगी, लेकिन एक सुखद अंत सही समय पर हो जाए तो ही बेहतर होता है। आस्तिक रायचंद और अरुणिमा की कहानी का ये हिस्सा तो खत्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आस्तिक और अरुणिमा आपकी जिंदगी से चले गए हैं। बिल्कुल नहीं। इस कहानी के बाद आपको इसी के अगले एपिसोड में पढ़ने को मिलेगी राजा साहब आस्तिक रायचंद और रानी साहिबा अरुणिमा की एक नई कहानी। सिंगल के राजा साहब और उनकी रानी की ये प्रेम कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि जहां इस कहानी में आपने बीस्ट को देखा है, वहीं अगली कहानी में आप मॉन्स्टर को देखेंगे।